بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ آیت پاک جو پڑھی گئی ہے اس میں چار باتیں ہیں. پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کی. جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور بطور نعمت کے ملتی ہے، اور بغیر استحقاق کے، بغیر اہلیت کے ملتی ہے. ہم اس کے مستحق بھی نہیں، ہم اس کے اہل بھی نہیں، حقدار بھی نہیں، ٹھیکے دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو بھی ہمیں چیز ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے بطور احسان کے، انعام کے، فضل کے، کرم کے. تو پہلی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہم کو مل رہی ہے، اور اللہ نے مفت ہمیں عطا کی. دنیا میں جو بھی چیز ملتی ہے اس کا بدلہ وصول کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. مفت میں کوئی بھی چیز نہیں دیتا. اغراض ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ جو بھی ہمیں دیتے ہیں ہم سے اس کا بدلہ نہیں لیتے. بس اتنا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے یا ناشکری اور ناقدری کرتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو نعمتوں کے سلسلے میں فکر مند بھی ہونا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تو پہلا حصہ ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی. اے بار الہ، آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کی جو آپ نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا فرمائی ہے شکر گزاری کریں. نعمت سے عام طور پر ذہن میں مال، دولت، اس طرح کی چیز آتی ہے. یہ تو بہت بات کی چیز ہے. یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی نعمت، اسلام کی دولت ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر یہ دولت نہ ملی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، کس کے سامنے جھکے ہوتے، ہمارا ماتھا کس کے سامنے جھکتا، ہم کس سے مرادیں مانگتے، کتنی اللہ کی ناراضگی ہم پہ اترتی، لعنت ہم پہ برستی. اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے بچایا ہے، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر زندگی بھر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، اس پر استقامت پر رہنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں پیدائشی طور پر کافر پیدا ہو رہے ہیں، زندگی بھر کفر میں گزر رہے ہیں، اور پھر موت بھی کفر کی حالت میں آتی ہے. بعضے ہیں جو کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، زندگی کفر میں گزری، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، ایمان نصیب ہوا، انجام اچھا ہوا، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا برعکس، اس کا الٹا، کتنے لوگ ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، زندگی برسوں برس مسلمانوں کے ساتھ رہی، لیکن شامت اعمال بدبختی آڑ آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، دائر اسلام سے نکل جاتے ہیں اور کفر کی موت مرتے ہیں۔ یہ روز کی کارگزاریاں ہیں۔ یہ ابھی قریب میں کرناٹکا سے ایک صاحب آئے، اسکول اور کالجوں کے ذمہ دار نوجوان ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا ہماری بستی میں کئی اسکول اور کالج چلتے ہیں جس کی نگرانی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی بستی ہے، ایک سال کا رپورٹ انہوں نے بتایا کہ آفسوں میں آ کر تقریباً 100 یا اس سے زیادہ نوجوان لڑکیوں نے اپنا نام افیڈیوٹ میں بدلا ہے کہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں، کافر ہو چکے ہیں۔ ایک بستی کا حال جو انہوں نے دیکھا ہے اور سروے کیا، چھوٹی سی بستی، یہ تو انہوں نے ان کو بتا دیا، ان کو معلوم ہو گیا، اور یہ جو ان کو پتا چلا وہ ہے، اب پورے عالم کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ایمان والے، کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ایمان والے بچے اور بچیوں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ بچیاں غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں، اسلام کو سلام کر کے ماں باپ کو خیر بات کر کے جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، جہنم میں جلنے جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ اس نعمت کی قدردانی کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اعمال ہیں، اعمال کی توفیق، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھی طرح عمل کر رہے ہوں اور ایک وقت آئے کہ ہم سے فرائض بھی ادا نہ ہو رہے ہیں۔ ابھی میں مدرسے سے نکل رہا تھا، ایک صاحب نے فون کیا، اللہ خیر فرمائے، سب کے حق میں خیر فرمائے، حضرت فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا ہے، حضرت کئی دن ایسے گزر رہے ہیں، حضرت اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، علم کی نعمت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، کتنے ڈرنے کی بات ہے، فرض ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے ظاہر کر دیا، اب ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ کتنی بڑی امت ہے، کروڑوں کی تعداد میں یہ فرائض سے غافل ہے، اور اہم ترین فریضہ نماز، دور دور تک بھی زندگیوں میں نماز نہیں، بس جمعے کی نماز ہوئی تو آئندہ جمعہ ہی، اور پھر عیدین میں دو دن، کبھی شب قدر شب برات میں آ گئے، پوری زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ اور قیامت میں جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز، اس کا یہ حال ہے۔ ایک ایک اس طریقے سے دیکھتے آئے ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، یہ ہمارا ہمارے معاملات ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اس طریقے سے یہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے سلام ہو ہمارے نبی کو، لاکھوں لاکھ سلام اور کروڑوں درود ہو کہ ایک ایک چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی اور ہم کو بتائی، اتنا بہترین دین ہمیں عطا فرمایا جس کی ایک ایک تعلیم، ایک ایک بات بھی ہی سنے رہے حروف میں لکھنے کی، اور ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، پوری ہی درد مندی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچایا، گواہ بنایا، تو کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی جب امت بہت لاپرواہی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ احکام کو چھوڑے، احکام کو توڑے، اور نبی پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے بزرگوں جی، ان سب چیزوں کی ادائیگی کی فکر ہو، ہر ایک بھی فکر مند ہو، اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں جی۔ تو جیسے شروع میں بتایا گیا کہ ہر چیز بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے بغیر استحقاق کے، ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں، ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت کے شیخ حضرت اقدس پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک دم پھٹ سے سوال کر دیا کہ حضرت یہ لوگ جو مانتے ہیں یہ اس لائق نہیں ہے اور مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کو دیں، اچھے مطلب हट्टे कट्टे मालूम हो रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि हम इनको दें, ये मुस्तहिक नहीं मालूम होते। तो जो ही कहने वाले ने ये बात कही तो हज़रत ने फौरन कहा, क्या तुम मुस्तहिक थे कि अल्लाह ने तुमको सब चीज़ें दी? तो तुम भी मुस्तहिक नहीं थे, बाकी अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो अपने फजल से दिया है, तो तुम भी मुस्तहिक नहीं थे इन चीज़ों के। तो अल्लाह ने दिया है तो तुम्हें दूसरों को देने क्या है? तो हम मुस्तहिक नहीं थे, ये हमारे जहनों में होना चाहिए। हम उसके अहल नहीं थे, अल्लाह ने कुछ दिया है, कुछ अहल बनाया है तो उसकी मेहरबानी। तो पहली चीज़ ये, या अल्लाह आपकी जो नेमतें आपने हमें दी हैं और हमारे माँ बाप को दी है, उनकी शुक्रगुजारी की आप हमें तौफीक अता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सरों के माँ बाप ईमान वाले हैं जी, हमारी नस्लें हमारे आबो ईमान की हालत में है, अल्लाह की नेमत है शुक्र। तो इस तरीके से हर हर चीज़ को हम सोच कर शुक्र अदा करने वाले बने। ये तो एक नमूने के तौर पर चंद बातें कही जा रही हैं, वरना हमारा हर हर सांस ही अल्लाह की नेमत है। हमारा एक एक कदम उठना, हमारा बैठना, हमारा ज़मीन पर लेटना, एक एक लुकमे का अंदर जाना और आफियत के साथ हजम होना और उसका ताकत बनना, ये सब चीज़ें अल्लाह ही की तौफीक, अल्लाह ही की मेहरबानी, अल्लाह ही की नेमत है। तो पहली बात यह है कि हम अल्लाह की जो है नेमतों की शुक्रगुजारी की तौफीक अल्लाह से मांगे। रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतका अल्लती अन'अमता अलैया व अला वालिदैया। दूसरी चीज़, व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। ऐ अल्लाह, आप हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाएं जिससे आप राज़ी हो जाएं। ये है बड़ा नुक्ता कि अल्लाह ऐसे अमाल जिससे आप राज़ी होते हों, ऐसे अमल करने की तौफीक अता करो। पहले तो अमल हो, साले हो, अच्छा हो, नेक हो, फिर वो भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो, अल्लाह उसे पसंद करें, अल्लाह उसे राज़ी हो, ये है असल चीज़। कोई भी अमल नेक बनता है तो उसमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, और तीसरी चीज़ है वो इख़लास के साथ किया जाए। तो कोई भी अमल वो नेक उसी वक्त बनेगा, साले उसी वक्त बनेगा जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, वरना फिर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, वरना वो फिर बिदअत बन जाएगी, दूसरी चीज़ बन जाएगी वो। और तीसरी चीज़ इखलास के साथ हो, और इखलास हमें मालूम नहीं कि हमने वो अमल इखलास के साथ किया है कि नहीं किया। वो इखलास तो हमें कल क़यामत में ही खुलेगा कि हम कितने पानी पर थे, क्या थे। हमारे हजरत अकदस सलाहुद्दीन सैफी दामत बरकातुह हमेशा फरमाते हो, उनसे उनके मुरब्बी और बुजुर्ग ने एक अजीब बात करीब बात कही कि इल्म की असल अमल है, अमल की असल इखलास है, और इखलास की असल ये है कि इंसान ये सोचे कि मेरे अंदर इखलास नहीं है। ये जब तक वो इस तरह सोचता रहेगा, डरता रहेगा, तब ये चीज़ उसकी अल्लाह पाक की तरफ से कुछ नसीब होगी, वरना बहुत आसानी के साथ वो धोखे में पड़ जाएगा और शैतान जो है मैदान मार लेगा, और इखलास इखलास के अनुमान पर मालूम नहीं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शैतान पैदा कर देगा। तकब्बुर है, बड़ाई है, किबर है, मालूम नहीं। अल्लाह सबको बचाए, सबकी हिफाजत फरमा। तो दूसरी बात है ऐसे अमाल की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा भी जिससे आप राज़ी हो। तो अल्लाह राज़ी हो इसकी तलाश हो, इसकी जस्तजू हो, इसकी कोशिश हो कि हमारे अमल से अल्लाह राज़ी हो। इसके लिए भी पूरी ज़िंदगी हमको कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे एक हदीस शरीफ में फरमाया गया, खुशखबरी है उस बंदे के लिए जिसके नाम आमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाया जाए। अल्फाज जो हदीस के हैं उसमें वजदा इस्तिग़फ़ारन कसीरा औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाए अपने नाम आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार या वजीदा भी उसको पढ़ा गया है। तो नाम आमाल में इस्तिग़फ़ार का पाया जाना, तो हज़रत मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं, वो इस्तिग़फ़ार जब हकीकी माने में इस्तिग़फ़ार रहेगा जब ही वो नाम आमाल में बतौर इस्तिग़फ़ार शामिल होगा, वरना तो वो इस्तिग़फ़ार ऐसा होगा कि उस पर इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फरमाया कि वो इस दर्जे हो इस्तिग़फ़ार के कल क़यामत में हमारे नाम आमाल में बतौर इस्तिग़फ़ार के उपाया जाए। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार को भी बचा के रखना, जो हम तौबा कर रहे हैं वो तौबा भी हकीकी हो। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि अल्लाह आप हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसे अमल करें जिससे आप राज़ी हों। इसके लिए पूरी ज़िंदगी हमें अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए। और देखिए नमाज एक चीज़ है, अफजल अमल है, लेकिन उसके आखिर में भी क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। नमाज पढ़ के अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह हमने बहुत जुल्म किया, फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता। अल्लाह आप हमको बख्श दिए कि आपके सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। तो मतलब ये है कि नमाज ऐसी जो हमने पढ़ी है, या अल्लाह ये कोई नमाज है क्या, आपकी बारगाह में पेश करने के लायक है क्या या अल्लाह जी, जो कुछ के अमल हुआ इसे आप कबूल फरमा लीजिए अल्लाह, बाकी जिस तरीके से पढ़ना था हमने नहीं पढ़ा अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। तीसरी चीज़ और फरमाया वासलिख ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना सालेह बना। औलाद के लिए जी अल्लाह पाक से दुआ करना, नबियों की दुआएं कुरान में मनकुल हैं, उसमें रब्बी हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तैयबा, अल्लाह आप अपनी तरफ से अता फरमाइए मुझे ज़ुर्रियतन तैयबा नेक साले औलाद, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेकोकारों जी मुझे मेरी नस्लों में नेकोकारों को पैदा फरमा। तो नेक पाकीज़ा औलाद नबियों ने मांगी, किसी की औलाद ना हो, कुछ साल शादी होकर गुजर जाए, उन पे क्या गुजरता है, दुनिया की सारी चीज़ें हैं लेकिन एक औलाद की नेमत ना हो, किस कदर दिल दुखी रहता है। और जिससे मिलते हैं तो बस औलाद ही की दुआ दरख्वास्त करते हैं, और किसी मजमे में औलाद की बात आ जाती है और दुआ के कुछ कलिमात आ जाते हैं तो किस कदर बरजस्ता आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं, दिल फूट फूट के रो देते हैं। ये होता है कि दुनिया की सारी चीज़ मिली एक औलाद की दौलत नहीं मिली तो हमेशा इंसान गमज़दा रहता है, लेकिन ये औलाद जब अल्लाह देते हैं और अपने फजल से देते हैं और अपनी कुदरत से देते हैं, वरना दुनिया की सारी दौलत आप रख लो, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह का फैसला नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये औलाद जब अल्लाह हमें देते हैं तो इसकी कितनी हिफाजत हम करते हैं, ये है मसला असल। तो अल्लाह पाक से दुआ भी करना कि अल्लाह हमारी औलाद को हमारे हक में नेक बना, लेकिन उसको नेक बनाने की जिम्मेदारी भी तो हमारे सर ही है, इसलिए औलाद के सिलसिले में फिक्रमंद होना। और आज की जो तहजीब है ये साफ अल्फाज में इंसान को हैवान और जानवर बनाने की कोशिश है, उससे बढ़कर शैतान, शैतान ने जो किया काम इंसान के लिबास को उतारा, वही हरकतें हो रही हैं और पूरा निज़ाम ऐसा बन रहा है, मुआशरा ऐसा कायम हो रहा है कि इंसान एक जानवर बन के ज़िंदगी गुजारे। बस यही बात है खुलासे कलाम के तौर पर, इसी की कोशिशें हो रही हैं कि इंसान इंसान ना रहे, फैमिली सिस्टम ना रहे, ये हलाल और हराम की तमीज़ ना रहे, रिश्ते नाते ना रहे, सब खत्म हो जाए, इंसान जानवर बन के ज़िंदगी गुजारे। खुलासा यही है, उसके लिए जो जो चीज़ें करनी हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में हमारी औलाद की निगरानी, अच्छे माहौल में रखना, उनको अदब अखलाक सिखलाना, हाँ बड़ों का वालिदैन का, ये जो आयत पाक है इसके शुरू से जो कलाम शुरू हुआ है वो वसैन अल इंसान अभी वालिदैही एहसाना, यहीं से शुरू हुआ है। और हमने इंसान को ताकीद के साथ ये बात कही कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करें। तो अदब जब ख़त्म हो जाएगा, जब छोटों बड़ों की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इंसान क्या रहा इंसान। इसलिए बुज़ुर्गों औलाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहे। उनमें सबसे पहले हमें जो फिक्र करने की चीज़ है उनके अकाइद की है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे घर ही में रह रहा है, हमारे इदारों ही में पढ़ रहा है, लेकिन अंदर से नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो दीन इस्लाम ही के ख़िलाफ़ सोच रहा है और उसकी सोच ऐसी बनती जा रही है, उसे तालीमात इस्लाम पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में शुकूक शुभात रोज़ और रोज़ उसके दिल में जन्म रह रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इससे बचाए। हाँ, वरना बहुत से नौजवान हैं जिनके दिलों में इस्लाम के सिलसिले में, तालीमात इस्लाम के सिलसिले में, पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में शुकूक शुभात भरे पड़े हैं। ये अलग बात है कि कोई जाहिर कर देता है, वरना हज़ारों की तादाद में है जो दिलों में छुपाए हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कैंसर का मर्ज़ है, आखिरी स्टेज में आकर ये जाहिर होता है। अब परेशान हो रहे हैं कि हज़रत फोर्थ स्टेज में आ गया बोलते हैं, हज़रत खून में उतर गया बोलते हैं, हज़रत क्या करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अकाइद का बिगाड़, नज़रियात गलत हो जाएं, अकीदे बिगड़ जाएं। और आज हम देख रहे हैं दहरिये बददीन, दीन बेजार, ये सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन दीन के नाम पर नए नए फितने खड़े हो रहे हैं, नई नई चीज़ें पैदा हो रही हैं। इंसान देखने को मुसलमान है, नाम भी वही है, ज़ुबान भी वही है, लिबास भी वही है, नमाज भी पढ़ रहा है, और सब कुछ बज़ाहिर वैसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन ईमान का सौदा अंदर से कर चुका है। ऐसे फितने उठ रहे हैं। तो इस्लाम के मुसलमात चीज़ें, ज़रूरियात दीन जो हैं, ऐसे अकीदों के सिलसिले में फ़र्क आना शुरू हो गया है। साफ तौर पर हम खुलकर बोलते हैं, क़यामत के करीब हज़रत महदी का आना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, ये सब बरहक है, इन पर ईमान लाना वाजिब ज़रूरी। आज इसके सिलसिले में सब ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा दायरे इस्लाम से लोग निकलते जा रहे हैं। जो बरसों तक नमाज़ें पढ़ रहे थे, दीन के काम कर रहे थे, दीन के तकाज़ों पे चल रहे थे, जिनकी सूरत शक्ल सब ऐसी ही है, वो इतनी कुफ्रिया चीज़ें और इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होकर खुद नहीं बल्कि दूसरों को, हज़ारों को गुमराह करने की मेहनतें शुरू कर चुके हैं। हाँ, इसलिए दीनी इदारे और असली तालीम गाहें कहीं भी कोई भी मुतमईन ना रहे, कहाँ से कैंसर का फोड़ा शुरू हो और कहाँ किस तरीके से वो फैले कुछ पता नहीं। इसलिए अकाइद के सिलसिले में, नज़रियात के सिलसिले में, उनकी ज़हनियत क्या है, इस सिलसिले में पूरी तरीके से फिक्रमंदी हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आमाल हैं, फिर अखलाक हैं, अकदार हैं, ये सब चीज़ें। तहजीब एक मुस्तकिल चीज़ है, हाँ, कल्चर एक मुस्तकिल चीज़ है। हमारा दीन, दीन की तालीमात, उसका मुआशरा, उसकी मईशत, सब चीज़ें हैं। आज ये पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन के नाम से एक ही तरीके पर रहना, खाली तुम्हें ना मुसलमान है नमाज पढ़ लो वहाँ तक तुम्हारा मसला अलग है, बाकी सारी चीज़ों में तुम हमारे साथ ही रहना, हमारे जैसे लिबास पहनना, हमारी जैसी ज़ुबान बोलना, हमारे जैसे तुम्हारे बाल रखना, ये हमारा खाना पीना जैसे ही वैसे ही होना। इस तरीके से ये तहजीब, कलाचार, कल्चर फैलता जा रहा है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यही उस्वा है, यही नमूना है, यही मॉडल है, यही आइडियल है। इसको हमेशा जहन में रखें, हमारे बच्चों के जहनों में ये बिठाएं। हाँ, बच्चों से बढ़कर बच्चियों के सिलसिले में फ़िक्रमंद हों, लिबास के बारे में इसमें गफलत ना बरतें, अल्लाह के वास्ते गफलत ना बरतें, आगे चलकर वो बच्ची बेहयाए बन जाएगी, तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी, इसलिए याद रखो। फिर ये जो मुसीबतें आई हैं इंटरनेट की है, मोबाइल फ़ोन की है, इससे भी अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते बचाओ, वरना फिर जो उसके अंजाम, उसके नतीजे जो सामने आ रहे हैं और भयानक और ख़तरनाक किस्म की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसके बाद क्या रहा। हम इनको जो है मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ जो मांगे दिला रहे हैं और वही हमारे से क्या बन रहे हैं, वो वाले जान वो, और इस तरह की मुसीबतों में हमको फंस रहे हैं। इसलिए औलाद के सिलसिले में फिक्रमंद। और चौथी चीज़ है इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, सियाकार हूँ, तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी एक मुसलमानों में से कंदना और हकीर मुसलमान हूँ। इस तरीक़े से हमेशा ये बात जहन में होनी चाहिए, बंदा जो है हमेशा अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। अपने किसी भी अमल पर गुर्राए नहीं, किसी भी अमल को बड़ा ना समझे, ये हमेशा, और यही शान नेकोकारों की है, सब कुछ करने के बावजूद अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो ये चार चीज़ें से इस आयत पाक में बयान की गई। बुजुर्गों, हम में से हर एक की ज़रूरत की चीज़ है, इसमें से हर एक एक चीज़ भी हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारी नस्लों के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ आने का मंशा यही है कि यानी कि खाली सिर्फ हम आपको मुराकबा बता दिए, कुछ जिक्र बोल कर दे दिए, नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा हर हर लम्हा, हर हर पल जी अल्लाह की रज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और हमारी इस्लाह इस सांचे में ढले, इसके लिए ही इस मजलिस में बुलाया जाता है। यानी कि बस दो चार चीज़ें बता दी आपको, नहीं, ऐसा नहीं, पूरी ज़िंदगी हमारी शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढली हुई हो, हमेशा हम फिक्रमंद हों, हमेशा हम अल्लाह से अपना लोग अपना ताल्लुक कायम किए हों, जुड़े हुए हों, गफलत हम पे न तारी हो, ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा पूरे आलम इस्लाम में जो हालात हैं उसके बारे में भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करना जी, और ख़ास तौर से हमारा क़िबले अव्वल जो है मस्जिद अक्सा जो है उसकी हिफाजत के लिए, बुजुर्गों हमारा हक़ बनता है कि हम दुआ करें। देखो, हमारे अंदर बड़ी बेहिसी है, सुन लो गौर से, बहुत बेहिसी है। अल्लाह हम सबको खैर नसीब फरमाए। हमारी तिजारत में ज़रा फ़र्क आए हम परेशान हो जाते हैं, हमारे मामलात में कुछ आगे पीछे हो हमारी नींदें हराम हो जाती हैं, हमारी औलाद कुछ ऐसा वैसा काम कर दे, बिजनेस में नुकसान कर दे, कितना हम परेशान होते हैं। लेकिन जो असल हमारा सरमाया है और हमारा जो रूहानी रिश्ता जिन चीज़ों से है, जिन जगहों से है, उससे हमको बेताल्लुक़ किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए और हमारे अंदर ज़रा बराबर भी एहसास न जागे, ये बड़ी बेगीरती की बात है। जो हो हमें क्या पड़ा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बहुत दुख की बात है ये। हाँ, मस्जिद अक्सा को ऐसी चीज़ नहीं है, वो हमारा क़िबला अव्वल है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई महीने उसकी तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए तो वहीं से ले गए और वहाँ हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम के इमाम बन के नमाज पढ़ाए, और वापस मेराज से तशरीफ़ लाए तो वहीं आकर वहाँ से लौटे, और अल्लाह ने साफ तौर पर सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल अक्सा इलल मस्जिदिल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा के अल्फाज में साफ तौर पर फरमाया। वो मौलिद अम्बिया है, वो मदफन अम्बिया है, वहाँ कितने नबी पैदा हुए, कितने नबियों की जी वहाँ पर कब्रें हैं, रूहानी बरकत हैं, बारकना हौलहू अल्लाह ने फरमाया, जिसके अतराफ़ हमने बरकतें उतारी हैं। हाँ, क़यामत के करीब लोग वहाँ जमा किए जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल वहाँ होगा, हज़रत महदी का ज़ुहूर वहाँ होगा, ये सब हमारी रूहानी चीज़ें हैं। लेकिन हम हैं कि हमें कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी हो जाए, हमारी शादियाँ, हमारे घर के काम काज यहाँ कंथे, इसमें फ़र्क नहीं पड़ना, ये बड़ी बेगैरती की बात है। इसलिए बुजुर्गों, कम से कम हम दुआओं में तो याद रखें, कुछ तो हमारे अंदर गीरत जागे, कुछ तो हमारे अंदर बेकरारी पैदा हो, कुछ तो हमारे अंदर कुड़न पैदा हो। अभी हमारे इलाके के कुछ उलमा उस सरजमीन को जाकर आए और उन्होंने ऐसा दुख भरा हाल वहाँ का सुनाया और वहाँ के लोगों के जो हालात को बयान किया। अल्लाह अकबर, कल अगर वो नौजवान वहाँ के खड़े होकर कयामत में हमसे सवाल करें तो हम क्या जवाब देंगे? वो जान को हथेली पे लेके खेल रहे, जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें मालूम नहीं कि अगले पल हमारा क्या हाल होगा, हमारी जिंदगी कब ख़त्म होगी। लेकिन वहाँ के जब जियाले ये अल्लाह के दीवाने खड़े हैं उस मस्जिद की हिफाजत के लिए, टॉर्चर हो रहा है, हमले हो रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, बाइज्जत औरतों की इस्मत इज्जत से खेला जा रहा है, सब हो रहा है, सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए तुले हुए, एक एक लुकमे के लिए मोहताज बने हुए। जो जमात गई आने के बाद कई दिन तक बेकरार रही, कहा कि हमारे पास कुछ सौदा सलफ नहीं था हम उनको दे सके, इस तरीके से मोहताजगी से हमारे आप पास आकर वो मांगते थे, एक एक लुकमे के मोहताज। चारों तरफ से बाइकाट है, हदबंदी है, हर तरफ से उनका नाकाबंदी कर दिया गया है, ऐसी हालतों में वो जी रहे हैं तो महज और महज अल्लाह के घर की हिफाजत के खातिर जी रहे हैं। और हम हैं कि मस्त, हमारे खाने पीने में फ़र्क नहीं आ रहा है, हमारी शादी ब्याह बल्कि रसूम बढ़ते चले जा रहे हैं, तकल्लुफात, तसन्नुआत, अखराजात, ये सारी चीज़ें फजूल खर्चियाँ हैं, किसी चीज़ में कोई कमी होने नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। दीनदार तबका हो, जाहिर में बाजार जी कुछ शनाख्त हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़रा बराबर भी कमी गवारा हमें हरगिज़ नहीं है। वहाँ लुकमे लुकमे के लिए मोहताज हैं। और इससे पहले जो हालात आए रोहिंग्या के मुसलमानों पर, वहाँ भी हमारे इलाके के कुछ उलमा जाकर आए, रो रो के कह रहे थे लाखों बच्चे हैं, ईसाई मिशनरी आ चुकी है उनको ले जाने के लिए, अगर हमने अब गफलत बरती तो ये पूरी नस्लें ईसाई बन जाएंगी, इस्लाम से हाथ धो बैठेंगी, कौन इसके ज़िम्मेदार हैं, तरस तरस के कह रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हीरत ईमानी हमारे अंदर बेदार हो, हमीयत दीनी और हिमायत दीनी हमारे अंदर पैदा हो, गफलत बेहिसी क्या हुआ तो क्या हो लग जान दे, डूब मरने की बात है, बहुत शर्म की बात है। और तीसरी चीज़ सुनिए कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो तीन तलाक का मसला चल रहा है, ये बात तीन तलाक की नहीं है, याद रख लो, वहाँ से किस्सा ख़त्म नहीं होता है, ये तो वो एक जैसे गल डालते हैं, जाल डालते हैं, वो तो देखने के लिए डाल रहे हैं, वो इस उम्मत में कितना दमखम है, ये कितना जो है तैयार है इसके लिए, ऐसे मौक़ों पर अगर हमने छोड़ दिया तो याद रखो मसला यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि कुरान के एक 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 हुक्म को ख़त्म किया जाएगा, साफ तौर से सुन लो। इसलिए इसके सिलसिले में फ़िक्रमंद होना, इसके सिलसिले में जहन बनाना, लोगों को समझाना, दुआएं करना, ये सब चीज़ें हैं, याद रखो। सिर्फ यहाँ आकर तस्बीह के मन के ढकलने के वास्ते नहीं है, दीन की गीरत पैदा करके हमारे अंदर जाना है, अल्लाह रसूल को कल जाके चेहरा दिखाना है, याद रखो। इसलिए जो इस वक्त हुकूमत जो चीज़ें पेश कर रही है, जो ला रही है, वो हमको आजमाने के लिए ला रही है, हमारे अंदर कुछ गीरत है कि नहीं है क्या, इसलिए गीरत का मुजाहरा होना चाहिए, दुआएं होनी चाहिए, ये अल्लाह ताला से इस तरह से हम रो के दुआ करें कि अल्लाह ये आपका कलाम है, आपका नाम है, ये इसको ख़त्म करने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। हाँ, एक शाहबानू का केस उठा था 84 में, पूरी मिल्लत और उम्मत बेकरार हुई, हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में आग लग गई थी, उलमाए कराम खड़े हुए, उन्होंने एक तहरीक चलाई और आखिर में जो है हुकूमत को वो चीज़ वापस लेनी पड़ी, लेकिन वो एक मसला था, आज ऐसे चार पांच मसले एक वक्त में उठाएंगे, अगर इस वक्त हमने गफलत बरती तो फिर याद रखो कि शरीयत की एक एक चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। अजान पर पाबंदी लाउड स्पीकर के हद तक है, आगे चलकर अजानों पर भी पाबंदी न लग जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाँ, एक एक चीज़ें, ये सब प्लान बन रहा है, इसलिए गीरत का मुजाहरा होना चाहिए, ये और हमें अभी से हमारे घरों में इन चीज़ों का मुजाकरा करना चाहिए, हमारी औरतों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर गीरत आनी चाहिए, हमीयत आनी चाहिए, बेहिसी की ज़िंदगी कब तक जिएंगे, मरना सबको है और मौत कब आएगी मालूम नहीं है, दूसरे पल में मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जाकर जवाब देंगे, ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है क्या? इसलिए बुजुर्गों याद रखें, अच्छी तरीके से हालात बहुत तेज़ी के साथ करवट ले रहे हैं, और बदल रहे हैं, इसलिए अल्लाह से रिश्ता जोड़ना, मजबूत करना, आगे नेकियों में बढ़ना, ये अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम करना, अल्लाह की मददों को उतारने वाले कामों को करना, ये चीज़ें हैं। पूरी उम्मत पर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पूरी उम्मत कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, रुजू इलल्लाह करे, मासियत से, गुनाहों से, ये इन सब चीज़ों से अल्लाह के वास्ते पनाह मांगे, दूर रहें, अपनी औलाद को दूर रखें। आज कितनी बेहिसी आ गई, एक मईशत का मसला उठा लें, एक सिर्फ काम धंधे का मसला उठा लें, हर एक परेशान नजर आता है, जिसे पूछो परेशान। हजरत बस नहीं आता है, हजरत पहले बेपरवाह इतने थे, वैसे हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, कॉलेज में पढ़े हुए कितने लोग हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो पढ़े हैं उस लिहाज से देखें तो बहुत मामूली चीज़ मिल रही है, और वो भी आपकी तबकी कब भेजेंगे, कब ख़त्म कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सब हालतें हैं, ऐसे सब माहौल बन रहा है, ऐसे में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर गुनाहों की बख्शिश, रिस्क में वसअत, घरों में बरकत, ये सब चीज़ें अल्लाह ही से मांगते हुए आफियत के साथ ज़िंदगी सहूलत के साथ गुजरे, इसके लिए अल्लाह ही से मांगें, उसके लिए हमारी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला करें, तौबा इस्तिग़फ़ार और कसरत के साथ ये बख्शिश मांगते रहें, तौबा करते रहें, रुजू इलल्लाह करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात है कि यहाँ जो आने का रास्ता है, कभी दिल में ज़रा सोच कर उसके लिए भी ज़रा दुआ कर देंगे कि अल्लाह ये रास्ते को आसान करो, इसके तूफ़ान में हमारे लिए आखिरत का भी रास्ता आसान करवाए। उसे एक ही ज़ोर से बोलते इंशाल्लाह बोलना चाहिए, ये रास्ता भी आसान हो जाए। हाँ, असल मसला तो वही है, वो ये है कि ये रास्ता हम आखिरत के रास्ते को आसान बनाने के लिए ही करें, इसी की नीयत से है कि, समझ रहे हैं भाई, और अल्लाह से इस तरीके से नीयत करें कि अल्लाह जब यहाँ इतनी परेशानी है तो आखिरत में कैसी परेशानियाँ रहेंगी, यहाँ नशे व फराज और पस्ती और बुलंदी हमसे गवारा नहीं है या अल्लाह, तो वहाँ की पस्ती और बुलंदी, नशे व फराज हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे यार। हाँ, तो ये हमारे लिए जो है, अब देखो फ़ैन्ना माल उसरी यसरा है, तंगी तकलीफ़ के बाद सहूलत है, वहाँ से आने तक तकलीफ़ है, यहाँ पहुँचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह राहत नसीब करते हैं। जो भी यहाँ आता है चंद लम्हों के बाद अल्लाह जल्ल जलाल उसको बेफिक्र कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है, तंगी तकलीफ से गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने आखिरत हमारी अच्छी कर दी तो हमेशा की राहत हमको नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आते जाते हुए इस तसव्वुर के साथ रह जाए, तज़किरा तबसिरा करते हुए, अभी डाले नहीं क्या, अभी कब डाल दे, सो ये ऐसा छह ना बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, या तो दुआ करते जाएँ या फिर आखिरत को सामने रखते जाए, सोचते जाएँ कि या अल्लाह ये जो हम तकलीफ उठा रहे हैं इसकी वजह से आखिरत की तकलीफों को, आखिरत की मशक्क़तों को आसान फरमाएं। तो इसलिए बहुत से लोग आते जाते हैं, यकीनन तकलीफ़ होती है, बड़े भी हैं, मजदूर भी हैं जी, और मुसाफिर भी हैं, परदेसी भी हैं, सबके लिए एक मसला है, उसके हैं उसके लिए दुआएं करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको रास्ते को हमवार कर दे जी। उसके बावजूद भी देखो ये जो मजमा आया है, कौन उम्मीद रख सकता था, बोलिए ये आए नहीं है बल्कि अल्लाह ने बुलाया है साफ तौर से, अल्लाह नहीं बुलाते तो इतनी मशक्क़त उठाकर यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, अल्लाह ने बुलाया है तो यकीनन कुछ देने के लिए ही बुलाया है। बंदा हाथ उठाता है इसका माना ये है कि अल्लाह कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए उसे मांगने की तौफीक दे रहे हैं। एक बुजुर्ग ने हमसे खुद कहा कि एक बार मैं सफ़र में गया तो हमेशा एक ही दुआ में करता था, अल्लाह नमाज का खुशू दे मुझे, नमाज का खुशू दे। तो मैंने हमारे हजरत से जिक्र किया कि हजरत मैंने पूरे सफ़र में यही दुआ मांगी, तो उनके हजरत ने फरमाया देना ना होता तो मांगना ना देता, अल्लाह आपको कुछ देना चाह रहे हैं इसीलिए मांगने की तौफीक दे रहे हैं। तो इसलिए हम जो यहाँ आए हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ने इसीलिए बुलाया है कि अल्लाह कुछ हमें देना चाहते हैं। और एक बात है, माफ़ करना, आज 25 जो है वो क्या है, दिसंबर है, क्रिसमस है, रजा है घर को आ गए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। मजलिस के लिए मुस्तकिल तौर पर हमें हमारी दुनिया की ज़रूरतों के लिए छुट्टी लेते ये लेते सब ठीक है, इसके लिए भी एक वक्त करके निकाल के कुर्बानी देकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, बहुत मुबारक है, लेकिन आइंदा भी जो है इस तरीके से हम पहले ही से, जैसे हम दूसरी जगह जाने के लिए प्लान करते हैं बच्चों की छुट्टियां आ जाती हैं तो आने से पहले ही पूरे प्लान, पूरे रिजर्वेशन और पूरा नक्शा तैयार हो जाता है। ऐसे मजलिस के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम पहले ही से जहन बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खुशकिस्मत लोग हैं, वो यहाँ से जाकर बस्ती में उतरते ही आइंदा मजलिस की तारीख के लिए रिजर्वेशन करके घर को जाते हैं ऐसे भी। और चौथी चीज़ जो है, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जो हफ्तावारी मजलिसों का सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके पर ये सिलसिला हो रहा है। अल्लाह इस्तेकामत अता फरमाए, साबित कदमी अता फरमाए। जब वहाँ हम हफ्तावारी भी मजलिसों में शरीक होंगे तो कुछ हमारे अंदर रंग चढ़ेगा, फिर यहाँ की माहाना मजलिस में इसी तरीके से मिलते जुलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका एक असर होगा। अल्लाह जल्ले जलालहू कबूल फरमाए, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए, हर तरफ से हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए, इस सफ़र को वसीले सफ़र बनाए। आमीन वाखुदा अलहमदिल्ला। थोड़ी देर के लिए हम मुराकबा करते हैं, आँखों को बंद कर दें, सर को झुका दें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कर कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। नीयत ये करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है يا الله سبحانه وتعالى يا رب لك الحمد ولك الشكر لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذكر من لا ذكر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عذيب الرجاء يا عذيب الرجاء يا عذيب الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا منير يا جبار أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودوي الماء نسألك أن تصلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار وقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ اے پاک پروردگار اے ارحم الراحمین اے اکرم الاکرمین آپ کے گندے گنہگار اے اللہ قصوروار ناہنجار बड़े गंदे बंदे जमा हुए हैं अल्लाह, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं अल्लाह, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं अल्लाह। अल्लाह जी हमें हमारे गुनाहों पर किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है अल्लाह, हम खुद मानते हैं अल्लाह ये करारी मुजरिम है अल्लाह, आपकी बारगाह में आए हैं अल्लाह, आपने बुलाया है अल्लाह तो ही आए हैं अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, आपने बहुत माफ़ किया है अल्लाह, फिर भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, गुनाह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अल्लाह, आपकी तौफीक से कुछ नेक अमल कर लेते हैं अल्लाह, फिर दूसरे ही पल अल्लाह हमसे गुनाह हो जाते हैं अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, कभी अल्लाह इस कमीनी दुनिया के फितनों को समझा दीजिए अल्लाह, ए अल्लाह इसके, ए अल्लाह इसके मुजिर असरात को हमसे दूर फरमा दीजिए अल्लाह, इसकी हकीकत को समझा दीजिए अल्लाह। अल्लाह धोखे में पड़े हुए हैं अल्लाह, धोखे में पड़े हुए हैं अल्लाह, जाहिर को बस बना लिया है अल्लाह, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनकर मखलूक को धोखा दे सकते हैं अल्लाह, आपको धोखा नहीं दे सकते अल्लाह, दो रंगी से बचा लीजिए अल्लाह, एक रंगी अता फरमा दीजिए अल्लाह, अल्लाह जी बचा दीजिए अल्लाह। आपने सत्तारी का पर्दा डालकर गुनाहों को छुपाया है अल्लाह, अगर गुनाह खुल जाएंगे कोई हमारी तरफ चेहरा भी नहीं उठाएगा अल्लाह, हमारे सलाम का जवाब भी नहीं देगा अल्लाह। रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, जिंदगी बहकते भटकते गुजर रही है अल्लाह, गुनाह बहुत हो रहे हैं अल्लाह, निगाहें गंदी हो चुकी हैं, दिल गंदा है अल्लाह, जुबान गंदी है अल्लाह, जज्बात और एहसास बिगड़ चुके हैं अल्लाह, नफसानी शैतानी हैवानी ख्यालत हमेशा सर पे सवार रहते हैं अल्लाह। दिलों को पाक फरमा दीजिए अल्लाह, निगाहों को साफ फरमा दीजिए अल्लाह, अल्लाह दिल में आपकी मोहब्बत अता फरमा दीजिए अल्लाह, बहुत गफलत है अल्लाह, बहुत दूरी है अल्लाह, दुनिया की हर चीज से वाकिफियत है अल्लाह, लेकिन आपकी ज़ात से बेताल्लुक है अल्लाह। अल्लाह जी सारी दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, आप ही के पास आना पड़ेगा अल्लाह, अगर आपको नहीं पहचाने तो बड़ा नुकसान खुसरान हो जाएगा अल्लाह। दुनिया की सारी मालूमात है अल्लाह, हर छोटी बड़ी चीज को जानते हैं अल्लाह, आए दिन की नई नई चीजों को मालूम कर रहे थे अल्लाह, कोशिश करते हैं अल्लाह, लेकिन गफलत है तो आपकी ज़ात से गफलत है अल्लाह, आपकी ज़ात से दूरी है अल्लाह, आपको पहचान भी नहीं पा रहे हैं अल्लाह, आपकी नेमतों को भी नहीं जान रहे हैं अल्लाह, आपके अहकाम पर भी अमल नहीं कर रहे हैं अल्लाह, अल्लाह जी आपकी नाराजगी मोल ले रहे हैं अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए, आप देख रहे हैं हम गुनाह कर रहे हैं अल्लाह, आप चाहे तो जमीन को फाड़ कर हमको धसा सकते हैं अल्लाह, आसमानों से अजाबों को उतार सकते हैं अल्लाह, आप हमको ढील दे रहे हैं अल्लाह, हम गुनाहों पे अड़ते जा रहे हैं अल्लाह, डट जा रहे हैं अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, आप ही बचा लीजिए अल्लाह, आप ही बचा लीजिए अल्लाह, कोई अमल ऐसा नहीं है जो आपकी बारगाह में पेश करने के लायक है अल्लाह, अल्लाह से मांगने का सलीका भी नहीं है अल्लाह, मांगना भी नहीं आता है अल्लाह, बिन मांगे दे दीजिए अल्लाह, अल्लाह जी बगैर इस्तेहकाक के दे दीजिए अल्लाह, आपका डर दे दीजिए अल्लाह, आपका डर दे दीजिए अल्लाह, आखिरत का इस्तेहजार दे दीजिए अल्लाह, आपने आपके सामने खड़े होने का तसव्वुर दे दीजिए अल्लाह, आपकी मोहब्बत दे दीजिए अल्लाह, आपका ताल्लुक दे दीजिए अल्लाह, नमाजों का खुशू दे दीजिए अल्लाह, तिलावत की हलावत दे दीजिए अल्लाह, मुनाजात की लज्जत दे दीजिए अल्लाह, दुनिया की बेबसी को बेसुबाती को समझा दीजिए अल्लाह, दुनिया के धोखे को खोल दीजिए अल्लाह, अल्लाह दुनिया की बेहयाई से बचा लीजिए अल्लाह, बदकारी से बचा लीजिए अल्लाह, नाफरमानी से बचा लीजिए अल्लाह, गफलत से बचा लीजिए अल्लाह, हमारे अल्लाह हमारे बच्चों को बचा लीजिए अल्लाह, बुरे माहौल से बचाइए अल्लाह, हम बचा नहीं सकते अल्लाह, हम बेबस है अल्लाह, आपकी मदद नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह, रहम कर फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, बुरे माहौल से बचाइए अल्लाह, बुरी आदतों से बचाइए अल्लाह, बुरे दोस्तों से बचाइए अल्लाह, बुरी सोहबतों से बचाइए अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं अल्लाह, बड़ों को शर्माने वाले काम कर रहे हैं अल्लाह, इज्जत और इस्मत सब खत्म हो रही है अल्लाह, रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, पूरी पूरी रात नाफरमानी में गुजर रही है अल्लाह, आपकी नेमतें आपने दी है अल्लाह, आंख नेमत है अल्लाह, कान नेमत है अल्लाह, दिलो दिमाग नेमत है अल्लाह,
سب نافرمانی میں لگ رہے ہیں اللہ، امت کو بچا لیجیے اللہ، امت کو بچا لیجیے اللہ، دشمن ہم پہ چھا گئے ہیں اللہ، امت مسلمہ نرغے میں آ گئی ہے اللہ، چاروں طرف سے چوراہے پہ آ کے کھڑی ہے اللہ، اپنے پرائے سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں اللہ، امت کٹ رہی ہے، امت لٹ رہی ہے، امت پٹ رہی ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، سب پرائے بنے دیکھ رہے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، ہر دن ہے اللہ امت کی عورتوں کے سہاگ لٹ رہے ہیں اللہ، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کا سایہ اٹھ رہا ہے، بے گھر ہو رہے ہیں، بے در ہو رہے ہیں اللہ، کب تک یہ دیکھتے رہیں گے اللہ، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، اللہ ہم نے مانا ہم بڑے گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناہنجار ہیں، بڑے گندے ہیں، لیکن یا اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں اللہ، آپ نے حضرت فرعون، آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا قولا لہو قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا، اللہ جی فرعون جیسا کٹر آپ کا دشمن، اے اللہ جس نے انا ربکم الاعلا کہا اس کے ساتھ نرمی کا آپ حکم فرما رہے ہیں، ہم آپ کو سبحان ربی الاعلا کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، نرمی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، موت اور ماں بعد الموت کو آسان فرما دیجیے، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیجیے، سکرات الموت اور قبرات الموت سے بچا لیجیے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے اللہ، سوال جواب کو آسان فرما دیجیے اللہ، پل صراط پہ آسانی سے باہر فرما دیجیے اللہ، اگر وہ اللہ اگر آپ نے پکڑ لیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہو، ہر ایک کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی اللہ، سب بھاگ رہے ہوں گے، سب انجانے ہو جائے گی اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اعمال کی حفاظت فرمائیے، اخلاق کی حفاظت فرمائیے، اقدار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، بیماریوں سے قرض داریوں سے بچائیے اللہ، بے روزگاری سے بچائیے اللہ، پریشان حالی سے بچائیے اللہ، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے، سب کو صحت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ زہر سے سحر سے بچائیے، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، سودی قرضوں سے بچائیے اللہ، بے روزگاری سے بچائیے اللہ، بے روزگاری سے بچائیے اللہ، پریشان حالی سے بچائیے اللہ، اللہ جی مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، مکتبوں کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، اللہ آپ نے اس زمانے کے فرعون اور شداد اور نمرود اور قارون کو پکڑا اللہ، آج کے بھی فرعونوں کو پکڑ لیجیے اللہ، اللہ جی اللہ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دیجیے اللہ، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر ختم فرمائیے، آپ کی زمین کو پاک فرمائیے اللہ، لوگوں کو سکون کا سانس عطا فرمائیے اللہ، ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے اللہ، ظلم بہت بڑھ چکا ہے اللہ، اللہ ظالم آپ کے کلام پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اللہ، آپ کے احکام کو بدلنے آ گئے ہیں اللہ، بنا جی اللہ آپ پوری قدرت والے ہیں اللہ، پورے جلال و جبروت والے ہیں اللہ، یہ نالائق اور کمبخت انسان آپ کے حکام سے کھیل رہا ہے اللہ، اللہ جی نیک توفیق دے دیجیے اللہ، ان کو بھی ہدایت دے دیجیے اللہ، ہدایت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، سب کو 100% ایمان عطا فرما دیجیے اللہ، اللہ امت مسلمہ کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اللہ جی نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے، اللہ جی نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے، حرام کاری سے بچائیے اللہ، گناہوں سے بچائیے اللہ، امت کروڑوں کی تعداد میں نماز چھوڑ رہی ہے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے رشتہ دار کتنے ہیں اللہ جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اللہ, ہماری اولاد چھوڑ رہی ہے, ہمارے بڑے چھوٹے چھوڑ رہے ہیں, ہمارے بھائی بہن نمازوں سے غافل ہے, ہمارے رشتہ دار برسوں برسوں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ. اے اللہ رحم فرما دیجئے, سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجئے, نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے, قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. زندگیاں گزر رہی ہے اللہ, قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے اللہ, پڑھنے بھی آتا ہے تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے اللہ, ہمیں نیک توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دعا میں ذکر کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, مناجات کی اور دعاؤں کی لذت عطا فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے. اللہ جی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیے, محتاج کا محتاج نہ بنائیے, آپ کے خزانوں سے عطا فرمائیے. اللہ آپ کے خزانوں میں ساری چیزیں ہیں اللہ, اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ, ہم کو ضرورت ہے اللہ, ہم محتاج ہیں اللہ, ہم اللہ ہم ضرورت مند ہیں اللہ, ہمیں عطا فرمائیے اللہ, آپ کے خزانوں سے عطا فرمائیے اللہ. جس کی جو حلال ضرورت ہے جائز میں اللہ مراد ہے پوری فرمائیے اللہ, اپنے خزانے سے عطا فرمائیے اللہ. اللہ دوریوں کو تنگیوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ, رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ, اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ, حاسدین کے حسد سے بچائیے, شریروں کی شرارت سے بچائیے, بدخواہوں کی بدی سے بچائیے. اللہ جنہیں جتنی بھی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے, اقامت دین کی نسبت پر اے اللہ جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے. اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے, اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ امت میں اتحاد پیدا فرمائیے, اللہ امت میں اتحاد پیدا فرمائیے. اللہ امت ٹوٹ چکی ہے اللہ, جس امت کو جوڑنے کے لیے آپ کے حبیب نے زندگی بھر محنت کی ہے اللہ, آج وہ امت کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے اللہ, ٹوٹ چکا ہے اللہ, دلوں میں دوریاں آ چکی ہے اللہ, شقاق و نفاق پیدا ہو چکا ہے اللہ, اختلاف و انتشار کا ماحول بن چکا ہے اللہ. امت کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ, اقوام عالم کے سامنے یہ امت بے بس کھڑی ہے اللہ, اور پارا پارا ہو چکی ہے اللہ, دلوں میں دوریاں آ چکی ہیں اللہ, نفرتیں پیدا ہو چکی ہے اللہ, نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیجیے اللہ, دوریوں کو قریبیوں سے بدل دیجیے اللہ, محبتیں پیدا فرما دیجیے اللہ, بھائی بھائی میں اختلاف ہے اللہ, بیوی بچوں میں اختلاف ہے اللہ, رحم فرما دیجیے اللہ, کرم فرما دیجیے اللہ. کب تک ہم ایسے رہیں گے اللہ, دشمن ہم پہ سوار ہوتے جا رہے ہیں اللہ, آئے دن ہماری طرف نشانہ بنا کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اللہ, اور ہم آپس میں بکھرتے جا رہے ہیں اللہ. اللہ جی رحم فرمائیے اللہ, ہمارے ملک میں رحم فرمائیے اللہ, خاص رحمت نازل فرمائیے اللہ, حفاظت فرمائیے اللہ, دشمن پوری سازشیں کوششیں کر رہے ہیں اللہ, اللہ جی دین کو ختم کرنے بد دین بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اللہ, رحم فرما دیجیے اللہ, کرم فرما دیجیے اللہ, اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دیجیے اللہ, امت میں اجتماع قلوب عطا فرمائیے, اتحاد فکر عطا فرمائیے, یکسوئی عطا فرمائیے, دل جمعی عطا فرمائیے. اللہ جی ہم سب کو متحد فرما دیجیے اللہ, متحد فرما دیجیے اللہ, آپ سے جوڑ دیجیے اللہ, آپ کے اللہ آپ کے دامن سے وابستہ فرما دیجیے اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے کو جو لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, سنت پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ سنتوں پر اپنے سے جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے, اپنے فضل سے عطا فرمائیے, اپنے کرم سے عطا فرمائیے. اللہ جی اتنا بڑا مجمع کسی بھی اللہ سقی کی دیوڑی پہ جا کے مانگتا تو وہ ہرگز محروم نہ کرتا, آپ سقیوں کے سقی ہیں اللہ, آپ داتاؤں کے داتا ہے اللہ, آپ شہنشاہ ہیں اللہ, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ. اللہ جی ہمیں دے دیجیے اللہ, دے دیجیے اللہ, محروم نہ فرمائیے اللہ, یہاں سے بھی محروم جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے اللہ, اللہ جی بچا لیجیے اللہ, محروم نہ فرمائیے اللہ, محروم نہ فرمائیے اللہ, سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اللہ, سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اللہ, ہماری طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں کروڑوں سلام بلا دیجیے اللہ, آقا کی کہ اللہ روز اقدس پر یہ بتا دیجئے کہ آپ کے امتی بیٹھے تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں, آقا کا دل تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو جائے اللہ, ہم نے آقا کو بہت تکلیفیں دی ہے اللہ، آپ کے آقا ہم کو سنتوں کو توڑ کر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پارا پارا کیا ہے اللہ، تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیجیے اللہ، دے دیجیے اللہ، ہمارا سلام پہنچا دیجیے اللہ، سلام پہنچا دیجیے اللہ، کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے اللہ، کروڑوں رحمتیں آپ کی خبر پہ نازل فرما دیجیے اللہ، سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔